नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र कल से हो रहा है शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में पेश करेंगी आम बजट। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मेला क्षेत्र को 4 फरवरी तक वाहन मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। सासाराम के सांसद मनोज राम पर कैमूर के कुदरा प्रखंड के नाथुपुर में विवाद के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जानलेवा हमला। सांसद और उनके 2 सहयोगी गंभीर रूप से घायल। और प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड में कमी से लोगों को राहत। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 4 दिनों में ठंड में होगी और कमी। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करेंगी। एक रिपोर्ट।
बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार को संसद की दोनों सदनों की एक साथ होने वाली बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ होगी। उसी दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं शनिवार को वित्त मंत्री वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जबकि सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा जो 4 अप्रैल तक चलेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए केंद्र सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा समाजवादी पार्टी, राजद, जदयू और अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी दलों ने संसद की कार्यवाही के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सहमति दिखाई है।
सब पार्टियों ने अपने अपने पार्टी का मुख्य स्टैंड और कुछ इश्यूज है, उन्होंने अनुरोध किया है कि पार्लियामेंट में इसका चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये बजट सत्र है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पर चर्चा होने के बाद कोई बहुत ही अर्जेंट इश्यू आएंगे तो उस पे भी बीएसी में बैठ करके इसका निर्णय किया जाएगा।
सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति ने आज संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इससे पूर्व समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों के संशोधन को कल स्वीकृति दी थी। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया है कि पिछले 6 महीने में इस विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श हुआ है।
6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं, तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे। उसमें 14 प्रोजेक्ट पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है।
और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को 4 फरवरी तक वाहन मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा यातायात प्रबंध और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। आकाशवाणी से बातचीत में यातायात को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अंशुमान मिश्र ने बताया कि मेला क्षेत्र में केवल आवश्यक सेवाओं वाले वाहन को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
इस स्थिति में सीमित परमिसिबल वाहन, जिनको परमिट दिया जा रहा है, जो हमारी विशेष सेवाओं में लगे हैं, इसके अतिरिक्त वाहनों के बाहर जाने को तो अनुमन्य किया जा रहा है, लेकिन हम मेले में एंट्री लेने के लिए अनुमन्य इनको नहीं किया जा रहा है। कोई दुर्घटना ना हो इसके दृष्टिगत ये अभी तात्कालिक निर्णय लिया गया है, और जैसे जैसे हम जल्दी ही इसको क्लियर करा लेंगे और हम सभी के लिए फ्री मूवमेंट अलाउ करवा देंगे।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल संगम घाट की भगदड़ में 30 लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने प्रयागराज पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले अगले अमृत स्नान के लिए महाकुंभ की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करेंगे। मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य सरकार ने 2019 कुंभ के दौरान प्रयागराज के मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल और इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भानु गोस्वामी को नियुक्त किया है। इसके अलावा मेले की व्यवस्थाओं में सहायता के लिए विशेष सचिव स्तर के 5 अधिकारियों को 12 फरवरी तक प्रयागराज भेजा गया है। महाकुंभ में बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की भी तैनाती की जाएगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कल मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए पूरी रात ट्रेनें लगातार चलती रहीं।
महाकुंभ में जो श्रद्धालु भक्तजन आए हैं उन सबके रेलवे की सर्विसेज के लिए कल करीब 364 ट्रेन चली है इवैक्यूएशन की। कंटिन्यूअसली रात भर पूरी टीम वॉर रूम में रही है और लगातार राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके करीब करीब 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को रेलवे के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है।
प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में बिहार के 9 लोगों की मौत हो गई, इनमें 8 महिलाएं हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों में गोपालगंज की 4, औरंगाबाद की 2 तथा मुजफ्फरपुर और पटना की 1-1 महिला शामिल हैं। वहीं एक अन्य मृतक की पहचान पश्चिम चंपारण के रामनगर निवासी रामेश्वर चौबे के रूप में हुई है। रामेश्वर चौबे का शव आज उनके पैतृक गांव तौलाहा लाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मृतकों के शवों को उनके पैतृक गांव भेजा जा रहा है। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नाथूपुर गांव के पास मुख्य सड़क पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ विवाद के बाद मारपीट में सासाराम के सांसद मनोज राम गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में सांसद के भाई और उनके एक अंगरक्षक को भी गंभीर चोटें लगी हैं। पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि स्कूल प्रबंधन, छात्र और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के बाद हुई मारपीट में सांसद घायल हो गए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। पटना की MP MLA कोर्ट ने पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर फैसला अगली सुनवाई तक टाल दिया है। मोकामा के पंचमहला गांव में गोलीबारी के मामले में आज न्यायालय ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस से केस डायरी की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई केस डायरी मिलने के बाद होगी। गौरतलब है कि गोलीबारी मामले में पूर्व विधायक ने बाढ़ की स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Pune पर जा सकते हैं। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 77वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज ही के दिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस अवसर पर दिल्ली में राष्ट्रपिता की समाधि स्थल राजघाट पर आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इधर पटना में गांधी घाट पर आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से राज्य के अधिकतर भागों में ठंड में कमी हुई है। विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 4 दिनों तक राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं राज्य के उत्तरी भागों में हिमालय की तराई वाले जिलों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है।
अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के उत्तरी भागों के 1 या 2 स्थानों पर घना कुहासा, जबकि राज्य के शेष भागों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के क्रम में आज मधेपुरा जिले में 288 करोड़ रुपए से अधिक की 37 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने इस दौरान रसलपुर धुरिया पंचायत के कलासन गांव में आयोजित कार्यक्रम में जीविका दीदियों और योजनाओं के लाभुकों से संवाद भी किया। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि श्रमिक हितों की रक्षा के लिए वन नेशन वन लेबर कार्ड लागू किया जाना चाहिए। श्री सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में वन नेशन वन लेबर कार्ड की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इससे श्रमिकों को पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी। नवादा पुलिस ने 50,000 के इनामी कुख्यात नक्सली उमेश रविदास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने बताया कि पकड़ी बरावा के एसडीपीओ और कौवाकोल थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान ये सफलता मिली है।
10 वर्षों से फरार चल रहे नक्सली कमांडर उमेश रविदास को नवादा पुलिस द्वारा जो है वो गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ पकड़ी बरावा और कौवाकोल थाना एसएचओ के नेतृत्व में नवादा से गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में ये जो है वो कोलकाता स्थित इको पार्क जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे वर्तमान में चावल का खरीद बिक्री का काम कर रहे थे और ये काफी बड़ी उपलब्धि है जो नवादा पुलिस द्वारा की गई है।
इधर बेगूसराय पुलिस ने बिहार एसटीएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई कर 50,000 के इनामी अपराधी शिवदत्त राय को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में परी चौक से गिरफ्तार कर लिया। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने दी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना के वीरचंद पटेल पद पर आयकर गोलंबर के पास 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में लंबा जाम लग गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया। मुंगेर और खगड़िया के बीच गंगा नदी पर बने श्रीकृष्ण सेतु पर निरीक्षण कार्य के कारण कल भी वाहनों का परिचालन विभिन्न अंतराल पर बंद रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मुंगेर और खगड़िया के जिलाधिकारी तथा रेलवे को पत्र लिखकर मेगा ब्लॉक की सूचना दी है। निर्देश के अनुसार कल सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक और पूर्वाहन 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सेतु पर वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। अरवल जिले के गांधी मैदान में नेहरू युवा केंद्र की ओर से फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय अंतर जिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भोजपुर जिले के कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र में 28 जनवरी को हुई हत्याकांड के 2 अभियुक्तों ने न्यायालय में समर्पण कर दिया। पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि इन अभियुक्तों को रिमांड मांगी जाएगी। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत घाघड़ा टोला में पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत गद्दो बाजितपुर स्थित ठाकुरबाड़ी से चोरों ने अष्ट धातु की राम लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां चोरी कर ली। पुलिस FSL टीम की मदद से मामले की जांच कर रही है। गोपालगंज के प्रभारी मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने आज समाहरणालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच चेक, जमीन का पर्चा और ट्राई साइकिल का वितरण किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र कल से हो रहा है शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में पेश करेंगी आम बजट। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मेला क्षेत्र को 4 फरवरी तक वाहन मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। सासाराम के सांसद मनोज राम पर कैमूर के कुदरा प्रखंड के नाथुपुर में विवाद के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जानलेवा हमला। सांसद और उनके 2 सहयोगी गंभीर रूप से घायल। और प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड में कमी से लोगों को राहत। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 4 दिनों में ठंड में होगी और कमी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।